शांति। सभी सदा राजी रहने वाले हो, हर बात में राजी, कोई गाली दे तो भी राजी, कोई इंसल्ट अपमान करे तो भी राजी, यह उस समय काजी बन जाता है। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले समीप भी बनते और समाप्त भी, समान भी बनते। राजी रहना अर्थात संतुष्ट रहना, अर्थात सर्व राजों को जानना। नाराज माना राज नहीं जानते तो नाराज रहते, आप तो सब राज जान गए हो ना, तो राज को जानने वाले राजी रहेंगे ना। नाराज वो रहता है जो राज को नहीं जानते, और आप कौन हो? त्रिकालदर्शी, नॉलेजफुल हो गए हो, तो सब राज को जानने वाले सदा राजी रहने वाले हो। यह प्रवृत्ति में थोड़ी खिटखिट होती है तो बदल जाते, सदा राजी रहते हो ना। फलक से कहो हाँ जी, क्या हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। सदैव यह स्मृति रखो कि भगवान बाप के बनने से अब राजी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे, अभी तो होना ही है ना। इसलिए कहते हैं ना खुश राजी, जो खुश होगा वो राजी होगा, जो राजी होगा वो खुश होगा। पूछते हैं ना एक दूसरे से खुश राजी हो, एक मुरली चली थी ना इस पे, कोई तुमसे पूछे कि खुश राजी हो तो क्या कहो उससे?
हमसे पूछते हो,
होश तो ठिकाने पर है, किससे पूछ रहे हो और क्या पूछ रहे हो? पार ब्रह्म में रहने वाले परमात्मा को हमने पा लिया है, हमसे पूछते हो। तो सदा राज को जानने वाले अर्थात सदा खुश रहने वाले खुश राजी, ऐसे नहीं यहां कहो हा और वहां जाओ तो कहो कि ना, कैसे करें? तो बाबा कहते हैं सभी सदा राजी रहने वाले होना, हर बात में राजी, कोई गाली देवे तो भी राजी, कोई इंसल्ट करे तो भी राजी, या उस समय काजी बन जाते हो। सदा खुश रहने वाले, सदा राजी रहने वाले समीप भी बनते और समान भी बनते। राजी रहना अर्थात सर्व राजों को जानना। कौन से राजों को हमने जाना है? कर्म की गुज गति का रस, ड्रामा का रस, सृष्टि के आदि मध्य अंत का रस, हर आत्मा के पार्ट का रस। सौ राज बताओ।
बाप का जो गुण है कर्तव्य,
आत्मा परमात्मा और जगत, जीव जगत और ईश्वर का रस। जीव अर्थात आत्मा, आत्मा के रस में क्या क्या जाना है?
सबसे बड़ा राज की पवित्र आत्मा 2500 वर्ष
राज, ये सबसे बड़ा राज बाबा ने तुम्हारे सामने रहस्य उद्घाटन किया, रहस्य राज भेद खोला है, जो मिस्ट्री थी उसको डिकोड किया है इस समय आकर कि तुम ही देवता थे। कितने साल देवता थे? कितना घंटे थे? ढाई घंटे, ढाई दिन, ढाई महीना कि ढाई साल कि 250 वर्ष कि 2500 वर्ष?
2,50,000 वर्ष आगे।
इतना लंबा समय जो पवित्र रहे हैं उनको पवित्रता की धारणा करना मुश्किल नहीं। तुम परम धाम में भी पवित्र थे, संसार ने अपने ऊपर नियमों को थोपा पवित्र रहने के लिए, और उन नियमों ने उन्हें विकृत कर दिया, और हमारे लिए वो सहज हो गया। किससे? स्मृति से। तो बाबा ने स्मृति और विस्मृति का भी राज बताया है। और कौन से राज बताए श्रीमन भाई बाबा ने? पाप और पुण्य का राज। पाप किसे कहते हैं और पुण्य किसे कहते हैं? अब तक हम पाप करते आ रहे थे और उसे ही पुण्य समझ रहे थे, तो बाबा ने पाप की परिभाषा और पुण्य की परिभाषा, नई परिभाषा दी हमको। और कौन से राज? कर्म की गुह्य गति के राज। पवित्रता का रास, पवित्रता की परिभाषा के रास, ज्ञान का रास, गुणों के रास, शक्तियों के रास, भक्ति और ज्ञान, भक्ति कल्ट और ज्ञान कल्ट के रास,
माया का रास,
माया क्या है,
खतरनाक
माया है क्या, यह एक रहस्य बना रहा विश्व ड्रामा में 2500 साल से। लोगों ने किसी ने धन को माया कहा, किसी ने प्रकृति को माया कहा, किसी ने माया को परमात्मा की एक शक्ति कहा, कभी किसी ने माया को परमात्मा की लीला कहा, पर बाप ने आगे कहा कि ये विकार ही माया है, ये एक नई बात है। और माया रावण सब एक ही चीज है, तो अपवित्रता का और पवित्रता के रास, और कौन से रास,
परमात्मा कर्तव्य,
परमात्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो रहता कहाँ है, वो काम क्या करता है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, स्थापना विनाश और पालना, ये सारे परमात्मा से संबंधित सारे रास,
वो किससे मिलता है,
वो किससे मिलता है, वो कब मिलता है, उसको अच्छा क्या लगता है, वो हर्षित कब होता है, उसको खुशी कब होती है, क्या देख कर उसे अच्छा लगता है और क्या देख कर उसे अच्छा नहीं लगता, ये राज वो वंडर कप को खाता है, वो राज उसको भी आश्चर्य होता है, ब्रह्मा का राज। हम ब्राह्मण है, कल की मुरली में था ना, अगर इतना भी पक्का कर लो कि तुम ब्राह्मण हो तो बेड़ा पार,
छोटे
हम अति सूक्ष्म है, तो परमात्मा भी के स्वरूप का राज वो अति सूक्ष्म है, कहाँ रहता है, क्या करता है, क्या खाता है, क्या पीता है, सब राज
आत्मनिर्लिप्त नहीं है,
आत्मा के सारे राज जो कल हम चर्चा कर रहे थे, आत्मा के अस्तित्व का राज, आत्मा चैतन्य है, आत्मा जड़ नहीं है, आत्मा कल आप कह रहे थे अक्षर, अक्षर अर्थात जिसका नाश नहीं होता, वो भी एक अक्षर का अर्थ है, अक्षर धाम माने अक्षय ही अक्षर है, अक्षय योग, गीता में 8वां अर्थ है अक्षय योग, मुझे कल समझ में नहीं आया आप क्या बोल रहे थे, तो अक्षर अर्थात अक्षर, अक्षय अर्थात अक्षय, तो आत्मा अक्षर है, आत्मा अक्षय है, आत्मा अभेद्य है, आत्मा घटती बढ़ती नहीं, घटती बढ़ती नहीं है, ये सारे आत्मा के राज, परमात्मा के राज, ड्रामा के राज, बहुत सारे राज, ड्रामा का ड्यूरेशन कितना है, ड्रामा कैसे घूमता है, क्या क्या होता है इस ड्रामा में, कब कब कौन सी आत्माएं आती है, सारे धर्म कैसे स्थापन हो रहे हैं, कब कब कौन सी धर्म की आत्माएं आ रही है, ये सारे राज, तो बाबा ने असंख्य राज यहाँ आकर हमको बताया है, और ये सारे राज जब हमारी बुद्धि में होंगे तब नाराजगी खत्म होंगे, अभी मतलब बीच बीच में नाराज हो रहे, इसका मतलब हमने राजों को जाना नहीं है,
वही तो जाना नहीं,
पूर्ण रीति से नहीं जाना है, जो चीज को हमने संपूर्ण रीति से समझ किया है वो हमको भूलता नहीं है, जो हमको अच्छे से समझ में आ गया है, एक है नियमों को थोपना ऊपर से, सन्यासियों ने नियमों को अपने ऊपर लाद दिए कि ये करो ये करो ये करो, बाबा ने समझ दी उन नियमों को,
इसका लाभ क्या है,
इसका क्या लाभ है, और अब तक तुम जो कर रहे थे उसके क्या नुकसान है, ये नियम एक नियम है कि बाहर का नहीं खाओ, ब्राह्मणों के लिए बहुत आसान है, क्यों, अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ गया और उसे कहो बाहर का नहीं खाओ तो उसके लिए बहुत मुश्किल है, ब्राह्मणों को कहो अमृत वेले उठे तो आसान है, बाहर वाले को कहो तो जो 8 बजे उठता है उसके लिए तो मुश्किल हो जाएगी, बाबा ने पहले समझ दी ज्ञान में, और हमारे जो नियम है वो क्या क्या करो इस पर ज्यादा निर्भर करते, हमारे नियम ज्यादा धर्मोपदेश से ना होकर वैज्ञानिक ज्यादा है, संसार के जो नियम है जो धर्मोपदेश है वो जैसे कि ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो ये नहीं करो, बाबा ने ज्यादा इस पर इम्पोर्टेंस दिया है कि क्या करो, संसार ने कहा अपने को आत्मा ने शरीर नहीं समझो शरीर नहीं समझो शरीर नहीं समझो तुम शरीर नहीं हो, सन्यासियों ने कहा है क्या हो ब्रह्म हो, उस पर ज्यादा भर नहीं दिया है, पर बाबा ने सबसे पहला जहां संसार का अध्यात्म समाप्त तो होता है वहां हमारा शुरू होता है, पहला चैप्टर है तुम आत्मा हो, जहां की वेदांत में सब कुछ ढूंढने के बाद अंतिम चैप्टर है कि तुम आत्मा हो, अभी अयम आत्मा ब्रह्म, लास्ट हमारा फर्स्ट वहां से है, वहां से चालू करो, सशरीरी से अशरीरी बनने का अभ्यास है हमारा, तो जो सब राजों को जानते हैं वो सदा खुश रहते। जो राज को नहीं जानते वो बीच बीच में नाराज, उदासी, डिस्टर्ब, खुशी गायब, चेहरा मुरझाया हुआ, जीवन में निरस्ता का अनुभव, पुरुषार्थ में उमंग उत्साह स्वतः ही कम हो जाना। कई लोग सोचते हैं कि पुरुषार्थ निरंतर कैसा बनाना, कुछ दिन करते कुछ दिन नहीं करते, सतत निरंतर ऐसा पुरुषार्थ होने के लिए ज्ञान भी उतना ही अंदर चाहिए, नहीं तो पुरुषार्थ ढीला हो जाता है। 18 जनवरी गई,
18 पूरे
बस, जैसे भक्ति मार्ग में श्रावण मास जो करना है सारे नियमों का पालन करो, वो हो गया, उसके बाद में मुक्त छुट्टी, जो करना है करो, जहां जाना है करो, जो खाना है खाओ। 18 जनवरी पूरा हुआ, 19 जनवरी को भीड़ कम, जगह ही जगह है बैठने के लिए बाबा के कमरे में, जहां भी बैठो
भीड़ कम हो जाएगी।
तो सभी राज को जानने वाले, बाप के प्यार का राज किसे प्राप्त होता है, परमात्मा प्यार, बाप दिल देने वाला, आज की मुरली में है परमात्मा कौन है, दिल देने वाला, इसके लिए उसे चैतन्य दिल वाला, दिल वाला कहते हैं, और जड़ यादगार इधर है। तो परमात्मा प्यार का राज, बाबा कहते हैं बच्चे सभी बाप के प्यार में सभी फूल पास है, परंतु ये मत समझ लेना कि सर्दी के दिन है और 18 जनवरी का दिन है, सभी शाल ओढ़े हुए हैं, शांति स्तंभ पर सभी एकत्र हुए हैं और गीत बज रहा है, आ जाओ ब्रह्मा भाई पावा, और आंखों से आंसू आ गए तो हमारा बाप से बहुत प्यार है, ये मत समझ लेना, वातावरण का असर है। जब ईश्वरीय वातावरण में प्रेम की तरंगे हो बहुत ज्यादा तो आंखों से आंसू आ जाते हैं, परंतु बाबा ने परमात्मा प्यार पर बड़ी गहरी गहरी मुरली चलाई है, तो केवल प्यार में आंसू आ गए 18 जनवरी के दिन, तो समझ मत लेना कि बहुत प्यार है। प्यार अर्थात कुर्बानी, प्यार अर्थात बाप समान, प्यार अर्थात सरेंडर, मन बुद्धि सरेंडर, आज की मुरली में वाक्य है एक, मन और बुद्धि दोनों सरेंडर, बहुत सूक्ष्म परिभाषा है परमात्मा प्यार की। ग्रुप नंबर 4, बाप द्वारा जो सर्व खजाने मिले हैं उन सभी खजानों की चाबी क्या है, खजानों के राज, ये भी एक राज है, राज तो खजानों के ही होते हैं संसार में, कौन सी चाबी लगाने से अनुभव होता है, मेरा बाबा, यही चाबी है ना, मेरा और फिर बाबा, तो जब मेरा हो गया तब जो बाबा का सो आपका हो गया, और बाबा कहा अर्थात वर्ष के अधिकारी पर। खजाने सभी आत्माओं को प्राप्त है, लेकिन खजानों का अनुभव तब कर सकते हो जब दिल में ये स्मृति रहेगी मेरा बाबा, बाबा कहने से ही वर्षा याद आ जाता है। अभी आगे, मालिक के साथ बालक भी हो और बालक के साथ मालिक भी, तो हम परमात्मा बालक है और सर्व खजानों के मालिक है। बालक बनने से सदा बेफिक्र, बच्चा बनने से बेफिक्र, सदा डबल लाइट, और मालिक अनुभव करने से मालिकपन का रूहानी नशा रहता है। तो बालकपन का अनुभव भी अवश्य है, आवश्यक है, और मालिकपन का अनुभव भी आवश्यक है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक, यह दोनों ही विधि आती है। ऐसे कई बातें व संबंध संपर्क में आने से कई समय ऐसे आता है कि जिसमें कहां मालिक बनना पड़ता है और कहां बालक, कौन सा समय है वो जहां पर बालक बनना पड़ता है और कौन सा समय है जहां पर मालिक बनना होता है,
निर्णय,
मीटिंग की बात बाबा हमेशा बताते हैं,
राय देने की बात,
जब राय देते हो तो राय बहादुर बनकर राय दो, और जब फाइनल हो जाता है तो हाजी, तो वो है बहादुर बन के निभाओ। अगर बालक बनने के बजाय उस समय मालिक बन जाए तो भी हलचल में आ जाते हैं, और जिस समय मालिक बनना चाहिए उस समय बालक बन जाए तो भी हलचल, जैसा समय वैसा स्वरूप, फ्लेक्सिबिलिटी, जैसा समय वैसा ही हमारा स्वरूप हो। यहां से अचानक कहीं जाना पड़े तो अपनी दिनचर्या को तुरंत मोड़ कर ले, स्वयं को भी और अपनी दिनचर्या को तुरंत, यहां से कुछ और करना पड़े जो दिनचर्या से हटके है तो ऐसे नहीं कि उसके लिए रोते रहे, जैसे गृहस्थियों के लिए कहा जाता है थर्ड संडे इंटरनेशनल योग है, कोई ज्ञान में चलने वाला परिवार है, अभी बस तैयार हो गए 5:30 बजे और सेंटर के जाने के लिए तैयार है और मेहमान आ गए, अभी क्या करेंगे। दो मार्ग हैं, एक तो दुखी हो जाओ, कोसो अपने आप को या उनको, उनको कुछ बोल भी नहीं सकते अब क्या करें, आ गए, उनको ऐसा तो बोल नहीं सकते कि जाओ, निभाना भी है उनके साथ तो बड़ा दुखी मन से बेमन से उनके लिए कुछ बनाओ, फिर बैठो उनके साथ, ना बाबा को भी कुछ कुछ बोलते रहो अंदर से, यही दिन मिला था इनको आने के लिए। और दूसरा मार्ग है उसे स्वीकार कर लो, अच्छा ठीक है अब वहां योग करने जा रहे थे, अब आप यही योग युक्त हो जाएंगे और इन्हीं को अच्छा योग युक्त कुछ बनाकर खिलाएंगे, ताकि वो भी यहीं पर इंटरनेशनल योग करना चालू कर दे। तो जैसा समय वैसा स्वरूप, यही सबसे बड़ी कला है।
अच्छा मौका मिला ये,
हाँ अच्छा मौका मिला, पर इस तरह के विचार कम आते हैं। हम बस अभी योग में जा ही रहे थे कि फोन आ गया, आ जाओ कुछ काम है। तो जैसा समय वैसा ही हमारा स्वरूप, तुरंत स्वयं को मोल्ड कर लेना, फ्लेक्सिबल रहना। कोई भी कार्य करते हो तो मालिक बनकर करते हो, लेकिन जब कोई बड़े या फाइनल करते हैं कि यह काम ऐसे नहीं ऐसे हो, तो उस समय फिर बालक बन जाते हो। राय के समय मालिक, और जब मेजॉरिटी फाइनल करते हो तो उस समय बालक, उस समय मालिक बनकर नशा नहीं, मैंने जो सोचा वो राइट है। अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो जैसा समय वैसा स्वरूप में स्थित रहना, यह विधि आती है। इसको कहा जाता है ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले, राय बहादुर भी बने और हाजी करने वाले भी, तो ऐसा करना आता है। क्योंकि इस ईश्वरीय मार्ग में, नोट करो इस वाक्य को, बहुत ही जबरदस्त वाक्य है बाबा का, इस ईश्वरीय मार्ग में कोई भी ऐसे नहीं कर सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई। क्या कह रहे बाबा, इस ईश्वरीय मार्ग में कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मेरी बुद्धि का प्लान बहुत अच्छा है, मेरी राय बहुत अच्छी है, मेरी राय क्यों नहीं मानी गई। हमारी राय नहीं मानी, हम तो चले, जो करना है करो, तुमको जो करना है करो, हमारी मानो तो हम आएंगे, सहयोग देंगे, नहीं मानी देख लो तुम, जो करना है करो। मेरी है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छा काम करती है, मेरी बुद्धि को रिगार्ड नहीं दिया गया, तो मेरी है ना, तो जो भी विशेषता है वह मेरी है या बाप की देन है। तो बाप की देन में मेरापन नहीं आ सकता, इसलिए सदा ही न्यारे और प्यारे रहने वाले। तो यह भी एक सीढ़ी है बालक और मालिक बनने की, यह सीढ़ी है। अभी अभी चढ़ो, अभी उतरो, कभी मालक बालक बन जाओ, कभी मालिक बन जाओ, इससे सदा ही हल्का रहेंगे, किसी प्रकार का बोझ नहीं। सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया ना, बाबा खड़ा है हाथ फैलाए दो, फिर भी नहीं देते, फिर भी टोकरी, और किस चीज की टोकरी, बाप गठरी, गठरी कौन सी,
गृहस्थपन
अवज्ञा,
टोकरी गृहस्थपन की और गठरी अवज्ञा है, और छोटे पाप बड़े पाप, छोटी अवज्ञा है बड़ी अवज्ञा है, सब प्रकार का बोझ बाप को दे दिया। बोझ उठाने की आदत तो नहीं है ना, अच्छा लगता है बोझ उठाने की आदत होती है तो कितना भी कहो बोझ उठाएंगे जरूर, चैन नहीं आता है जब तक बोझ नहीं उठा रहते। बाप उठा उठा के नीचे रखता है, बोझ उठाने वाले नहीं, हल्के रहने, हल्के रहेंगे तो उड़ेंगे, और बोझ वाले नीचे, जितना हल्का उतनी ऊंची स्थिति में उड़ता रहेगा। बोझ वाले की निशानी है वह स्वतः ही नीचे स्वतः ही आ जाता है, और हल्के की निशानी है वह स्वतः ही सहज ऊंचा उड़ता है। तो कौन हो उड़ने वाले, आज मुरली में कहा है आत्मा के पंख टूट गए हैं। सोचो इस बात को, एक पक्षी है जिसके पंख टूट गए हैं, शब्द चित्र बनाओ मन में क्या उसकी दशा होती है, और बाप ने आकर ज्ञान और योग के पंख तुमको लगाए। एक पक्षी जिसके पंख टूटे हुए हैं, चिल्ला रहा है, दर्द पीड़ा वेदना उसका रुदन गूंज रहा है हवाओं में। तो उड़ने वाले कौन है? जिनके पास पंख होते हैं। तो जब समय ही है उड़ती कला का, उड़ती कला के समय उड़ने में भी प्राप्ति है। दोनों में बिजी रहते हो ना, याद में भी सेवा में भी। सेवाधारी को सेवा के बिना चैन नहीं आता। ऐसे सेवाधारी हो या जब चांस मिलता है तब सेवा करते हो, जैसे सेवा में आगे बढ़ते हो ऐसे याद में भी सदा आगे बढ़ो। याद और सेवा का बैलेंस, सदा आगे बढ़ना है, बैलेंस रखना आता है। कभी सेवा में बहुत आगे चले जाते हो, कभी याद में आगे जाते हो तो सेवा भूल जाती हो, बच जाती है, ऐसे नहीं। याद और सेवा दोनों सदा साथ साथ रहे। अच्छा, फिर आगे बाबा, लास्ट पैराग्राफ। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और प्यारे रहते हो ना, किसी भी बंधन में फंस तो नहीं जाते। आधा कल्प तो स्वयं को फंसाते रहे, निकालने की कोशिश करते भी फंसते रहे। अब बाप ने सब बंधनों से न्यारा बना दिया, तो संकल्प मात्र भी किसी भी बंधन में, अपनी देह में, पदार्थों में फंसना नहीं। 63 जन्म अनुभव करके देखा ना, फंसने से क्या मिला, जो कुछ था वो गवाया। तो संकल्प में भी बंधन मुक्त, तो सबसे पहले हमको अपने संकल्पों को बंधनों से मुक्त करना है। इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। संकल्प में भी बंधन आकर्षित ना करे, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में आ जाता है। तो संकल्प में ही खत्म कर दो। इसी न्यारी न्यारे और प्यारे अर्थात अव्यक्त स्थिति का विशेष अभ्यास करना है। व्यक्त भाव में आते भी अव्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना है। व्यक्त भाव में आते भी, ये भी 31 की मुरली चल रही है, अव्यक्त भाव में आते भी, व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव के आकर्षण में नहीं आना है। अव्यक्त अर्थ ही, अव्यक्त का अर्थ ही क्या है? व्यक्त भाव से परे। अव्यक्त बनना आता है ना, तो अभी सदा शब्द को अंडरलाइन करना। सभी खुश है? कभी खुशी चली तो नहीं जाती, कभी कम हो जाती है। आपका खजाना है तो बढ़ते रहना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। तो खुश रहना और खुशी बांटना अच्छा है। सेवा तो बढ़ाते चलो और स्वयं को भी बढ़ाते चलो। जगदीश भाई ने अपने अनुभव में लिखा है ब्रह्मा बाबा के लिए कि पहले पहले जब अंतिम दिन थे ब्रह्मा बाबा के, तो बाबा पहले जो डायरेक्शंस देते थे वो डायरेक्शंस देने की उनकी विधि भी परिवर्तन हो गई थी। अगर कोई किसी को बाबा को पूछता था बाबा ये 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 करना है, तो बाबा कहते थे ठीक है श्रीमत अनुसार जैसा पसंद, जैसा आपको लगे वो करो। पहले कहते थे ऐसा करो ऐसे करो ऐसे करो, पर बाद में जो डायरेक्शंस देने, जो बोलते वो इतने कम कम हो गए थे कि वो डायरेक्शन देना भी बस उतना ही। धीरे 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 जैसे कि कई आत्माओं को इसका पूर्वाभास हो गया था कि बाबा भी शरीर छोड़ने वाले, पर किसी ने कहा नहीं। एक तो डर या दूसरा बहुत प्यार। कई सारे प्रश्न है इसके कि कई बाबा ने बताया क्यों नहीं जाने से पहले, अचानक क्यों गए, बहुत सारे इसके ऊपर तर्क वितर्क है। और मम्मा जब से गई तब से ही बाबा और ज्यादा अव्यक्त हो गए, जिसकी लगा कि उसका पार्ट और मेरा पार्ट लगभग समान है। तो बाबा ने एक तो मुरली यहां तक चली है 18 जनवरी 1967 की साकार मुरली है एक, कि जिसमें एक बाबा ने स्पष्ट कहा हुआ है बाप रहे ना रहे, 2-3 बार ये शब्द आया उसमें, बाप रहे ना रहे तुमको तो कार्य करते रहना है। वहीं से इशारा देने चालू हुए, जिनको पकड़ना था उन्होंने पकड़ लिया। पाप रहे ना रहे ये दुकान बंद नहीं होनी चाहिए, और ब्रह्मा ही मुकरर शरीर है, दूसरा और कोई नहीं है, ये भी उसमें बोला। बाप क्या किसी और तन के, और के भी तन में आ सकता है, ये भी बोला है उसमें।
बोला बाप किनारा हो जाए तो भी चला सकते।
हाँ, बाप किनारा हो जाए तो भी चला सकते। तो ये सारे बाबा ने अव्यक्त इशारे और बाबा की जो स्थिति थी, यहाँ तक जगदीश भाई ने लिखा है कि जब से बाबा यहाँ आए थे बाबा ने पैसे को हाथ भी नहीं लगाया था, टच भी नहीं किया था पैसे को। धीरे 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 जैसे वो आत्मा संपूर्ण बनती गई, वो संपूर्ण आत्मा के लिए फिर ये शरीर अपूर्ण था, इस शरीर में वो रह नहीं सकती थी ज्यादा समय, इसके लिए ये शरीर उस आत्मा के लिए अपूर्ण था, उसको उड़ना ही था। अच्छा ओम शांति।
Thank you.